संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 10 दिसंबर 2021 के बुलेटिन की सुर्खियां। विश्व मानवाधिकार दिवस पर दुनिया भर में विषमताओं के तमाम रूपों को जड़ से मिटाने की पुकार। कोरोना वायरस के एक और वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में भ्रम और डर के बीच जानकारी जुटाने के प्रयास, वैक्सीन विषमता पर भी चिंता। यूनिसेफ की चेतावनी, बच्चों पर कोविड महामारी का हुआ है असाधारण असर, बताया अभी तक का सबसे बदतरीन संकट। और पिछले एक दशक में भूमि व जल संसाधनों पर रहा है भारी दबाव, बढ़ती विश्व आबादी के लिए खाद्य असुरक्षा का जोखिम। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने कहा है कि कोविड 19 महामारी ने पिछले 2 वर्षों में पीड़ादायी ढंग से बढ़ती विषमताओं की असहनीय कीमतों को दर्शाया है। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त ने शुक्रवार 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जारी अपने वक्तव्य में कहा कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि हम सभी एक जैसे दिखें, एक तरह से सोचें या एक तरह से काम करें, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत इसका अर्थ है कि हम अपनी विविधता बनाए रखें और ये मांग करें कि हर किसी के साथ बिना किसी भेदभाव के बर्ताव किया जाए। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविल का कहना है,
The past 2 years have demonstrated all too painfully the intolerable cost of soaring inequalities that the Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN General Assembly 73 years ago on the 10th of December 1948.
रूपर्ट कॉलविल कह रहे थे कि पिछले 2 वर्षों ने बहुत दर्दनाक तरीके से गहरी होती विषमताओं की भारी कीमतों को दर्शाया है। वो विषमताएं जिन्हें खत्म करने की पुकार एक बेहतर दुनिया का रास्ता आसान करने के प्रयासों के तहत अब से 73 वर्ष पहले यूएन महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अनुमोदित मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में लगाई गई थी। उसके बाद 2 दशकों के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई थी, मगर पिछले 20 वर्षों के दौरान विशेष रूप में 2001 के बाद से एक के बाद एक वैश्विक झटकों से प्रगति पर असर पड़ा है। यूएन मानवाधिकार प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविल के शब्द। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने भी मानवाधिकार दिवस पर अपने संदेश में आगाह किया है कि कोविड 19 महामारी से उबरने के प्रयास मानवाधिकारों व स्वतंत्रताओं के विस्तार और विश्वास का पुनर्निर्माण करने के लिए एक अवसर साबित होने चाहिए। दुनिया भर में किसी भी तरह के भेदभाव को मिटाने की खातिर प्रयास करने के लिए 20 वर्ष पहले डर्बन घोषणा पत्र और कार्रवाई कार्यक्रम DDPA अनुमोदित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे पर दुनिया भर में भेदभाव पर ताज़ा हालात जानने की कोशिश की है। भारत में भी आबादी के विभिन्न हिस्सों को भिन्न तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक समुदाय में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा की खातिर प्रयासरत रीता कौशिक के साथ सुनिए अंशु शर्मा की खास बातचीत।
रीता, भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं की स्वयंसेवी संगठन का नेतृत्व करती हैं और दलित समुदायों की लड़कियों की शिक्षा में बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। आपका यह सफर शुरू कैसे हुआ?
मैं एक दलित परिवार में जन्मी हूँ, बड़ी पली बड़ी हूँ। तो ये जो पितृसत्तात्मक समाज में जेंडर भेदभाव और लड़कियों के साथ जो भेदभाव होता रहा है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। पढ़ने लिखने का अवसर नहीं था, मेरे माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे। तो एक बार एक गांव के व्यक्ति के कहने पर उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तो फिर वहां से मेरी पढ़ाई हुई। घर की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। 12th में हमने फर्स्ट क्लास पास किया था साइंस ग्रुप से और उसके बाद BSc करने का मन था मेरा। बीच में ही हमारी पढ़ाई रुक गई, फिर हम टाइपिंग सीखे और 1 साल तक एक डिस्पेंसरी में मैंने काम किया और उसके बाद फिर कंप्यूटर सीखा, फिर एक स्वयंसेवी संस्था में हम काम करने लगे। और वहां से काम करते करते मैंने 2004 में जाकर के एक संस्था का गठन किया और संस्था का नाम सामुदायिक कल्याण एवं विकास संस्थान था, जिसके तहत मैं आज भी काम कर रही हूँ और महिलाओं और बच्चियों के अधिकारों, उनकी शिक्षा के लिए और उनके राइट्स के लिए मैं पहल कर रही हूँ।
तो सफर में बहुत प्रेरणादायक सफर रहा है आपका, लेकिन इस सफर में जाहिर है काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा। कौन सी चुनौतियां सामने आई?
हमको सबसे पहले अपने माता पिता से ही फाइट करनी पड़ी। वहां पे भी हमें समानता का अधिकार नहीं था। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे, मेरी माँ नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल से जुड़ू। मेरे जो पिताजी और माताजी थे, जब उनकी सोच बदली तो जो गांव के लोग थे, जो मेरे ये लोग की तरफ से बहुत गालियां मिलती थी, मेरे को भी मेरे फादर को भी, कि ये तो अब लड़की को भेज रहा पढ़ाने के लिए। और इसके बाद हम फील्ड में जब गए तो फील्ड भ्रमण के दौरान भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब हम ऊंची जाति के लोग अगर बीच में कभी मीटिंग में शामिल हो जाते थे तो उनकी तरफ से भी बहुत दिक्कतें होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि गांव में कई जातियों के लोग हैं और वो एक साथ मीटिंग में आते हैं, लेकिन बाद में जब पता चलता था कि ये तो लड़की दलित जाति से है तो उस वहां पे भी दिक्कतें होती थी। लोग मीटिंग छोड़ के कभी कभी चले जाते, दोबारा मीटिंग में कभी नहीं आते थे।
दलित पुरुषों के मुकाबले क्या दलित महिलाओं की समस्याएं अलग हैं?
पुरुषों के मुकाबले जो महिलाओं का अत्याचार है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि महिलाओं के साथ रेप होता है, मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, यौनिक हिंसा होती है, फिजिकल हिंसा भी होती है, फिर उसके हत्याएं भी होती है।
भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को समानता प्रदान करता है, क्या आजादी के बाद से आपको लगता है मानसिकता बदली है?
दलित समाज की कुछ तबका जो है वो जागरूक हुआ है, शिक्षित हुआ है और उच्च स्तर की नौकरियों में शामिल हुआ है, तो इस तरह से काफी लोग आ रहे हैं आगे। मुसहर समाज से बहुत ऐसे लोग नहीं आ पाए हैं सामने, पर दलित समाज से बहुत सारे लोग सामने आए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अनेक देशों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव के बीच वैक्सीन आपूर्ति व्यवस्था और जमाखोरी की आशंका पर चिंता जताई है। UN एजेंसी ने आगाह किया है कि अगर धनी देश निर्धन देशों के लिए टीके उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें अपने काबू में रखने का निर्णय लेते हैं तो वैश्विक महामारी का खात्मा न हो पाने का जोखिम बढ़ जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
UN स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि निर्धन देश कोरोना वायरस से बचाव के लिए COVID-19 वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार करते रहे हैं। अब उनके लिए टीकों की खेप पहुंचना शुरू हुई है और इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जानी होगी। उन्होंने आशंका जताई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव की वजह से वैक्सीन की जमाखोरी अगर फिर से बढ़ती है तो वैश्विक महामारी के लंबा खिंच जाने का जोखिम बढ़ जाएगा। UN स्वास्थ्य एजेंसी के प्रतिरक्षण वैक्सीन और जैविक विभाग में निदेशक डॉक्टर केट ओब्रियन ने कहा,
As we head into whatever the Omicron situation is going to be, there is risk that the global supply is again
जैसे जैसे हम ओमिक्रॉन वेरिएंट से उपजे हालात की ओर बढ़ रहे हैं, टीकों की वैश्विक आपूर्ति फिर से धनी देशों की ओर मुड़ने और जमाखोरी होने का जोखिम है। ये देश अपनी आबादी की पूरी तरह से रक्षा करना और किसी भी मलाल से बचना चाहेंगे, मगर UN समर्थित कोवैक्स पहल में वितरित किए जाने के बजाय टीकों की आपूर्ति पर अपना काबू रखने से महामारी का खात्मा किया जाना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच आरंभिक जानकारी के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट के विरुद्ध मौजूदा वैक्सीन कुछ हद तक कारगर हैं, मगर अभी इस संबंध में और स्पष्टता की आवश्यकता है।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बुधवार को जारी अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि COVID-19 महामारी ने बच्चों को अभूतपूर्व स्तर पर प्रभावित किया है। UN एजेंसी ने अपने 75 वर्षों के इतिहास में इसे अब तक का सबसे खराब संकट करार दिया है। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
रिपोर्ट बताती है कि कोरोना वायरस संकट से बच्चों के अधिकारों के लिए जिस तरह संकट खड़ा हुआ है वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। भरपेट भोजन ना पाने वाले, स्कूली शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित, दुर्व्यवहार का शिकार, निर्धनता में जीवन गुजार रहे बच्चों की संख्या बढ़ रही है। महामारी के कारण 10 करोड़ अतिरिक्त बच्चे अब निर्धनता के विविध आयामों में जीवन गुजार रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि पिछले एक दशक में मृदा, भूमि और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है और अब स्थिति एक नाजुक पड़ाव पर पहुंच गई है। वर्ष 2050 में विश्व आबादी बढ़कर 10 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती आबादी के लिए भोजन का प्रबंध करने के रास्ते में अनेक चुनौतियाँ हैं। तो आज के इस साप्ताहिक बुलेटिन में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।